है केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य छोटा सा तात्पर्य है, जानते सुनिए। इस कलयुग के असंख्य दोषों का उल्लेख करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब उसके एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कलमश को नष्ट कर सकता है। इस पतित युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के महत्व का अनुमान लगा पाना असंभव है। आप लोग सामने आइए ना, पीछे नहीं बैठना चाहिए, सामने आओ। वक्ता के पीछे नहीं बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। तुम लोग सामने आओ और आप लोग पास पास आ जाओ, थोड़ा सा पास आ जाओ, जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे। और जप नहीं करिए आप, जप नहीं करिए, जप नहीं करना है ऐसे। जब क्लास होती है तब जप नहीं करते, माता जी जप नहीं करिए, हाथ निकाल लीजिए, माला में से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि जो जप है यही आज इसी का यही विषय है। जप जो है हमें सुनना चाहिए, जप का मतलब है हम कीर्तन भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं। तो जब हम श्रवण के लिए बैठे हुए हैं तो फिर सुन नहीं पाएंगे ना, कान एक टाइम में दो बातें नहीं सुन पाएगा, जप अलग करना चाहिए हमें। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 12वें स्कंद में जहाँ पे कलयुग में जो दोष हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई, देखो शास्त्रों में कलयुग में क्या होगा वो पहले से ही बता दिया गया। 12वें स्कंद में आप जाके पढ़ोगे तो जो आज आप देख रहे हो कल की कहाँ आएंगे, कल की भगवान कहाँ आएंगे उसका वर्णन है सब। देखो तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। तीर्थ स्थान को पहले कह दिया गया है, ये भागवतम जो है अभी नहीं लिखी गई, तो हजारों हजारों वर्ष पूर्व वेदव्यासी ने भविष्यवाणी कर दी है कलयुग कैसा होगा, है ना। आपने सुना भी है ना वो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। वो देख रहे हैं ना वो आज कलयुग में भी हो रहा है। तो ये भी बताया कैसे भागवत में कहा गया है तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। तीर्थ स्थान का मतलब होगा जैसे हरिद्वार लोग जाते हैं बस गंगा स्नान करने के, बस पानी में स्नान डुबकी लगा ली, तीर्थ स्थान हो गया। और सौंदर्य किसमें माना जाएगा, केश सज्जा पे, है ना। इसीलिए हम लोग केश कटा देते हैं, है ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं। केश है ही नहीं तो सजाने की बात ही, ना हमें शैम्पू की जरूरत है, ना हमें वो क्या कहते हैं चीटर्स क्या होते हैं वो जो जो सफेद कर लेते हैं, है? नहीं वो बाल बाल ब्लीचर ब्लीच ब्लीचर 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 होते हैं ना, वो डाई भी करते हैं उसको, ऐसे करते हैं जैसे किसी के काले बाल है ना वो ऐसे ब्लीच कर देते हैं, यहाँ से एक लट उनकी सफ़ेद हो जाती है। देखा हमने यंग लड़कियाँ होती हैं वो बाल सब बूढ़ी कर लेती हैं, बूढ़े बूढ़ी बनना चाहती हैं वो। बूढ़े लोग जो है वो कालक मल लेते हैं हमने सिर पे, वो जवान बनना चाहते हैं। और जवान लड़कियाँ जो है वो एक ब्लीचर आते हैं ऐसे लगाती हैं, एक लट उनकी सफ़ेद हो जाती है। फैशन इतना खर्चा होता है बालों पे पूछो मत। और एडवर्टीजमेंट आती है देखो ये बाल के लिए ये कंडीशनर लाओ वो कंडीशनर, तो ये भागवतम में पहले ही कह दिया है। फिर क्या कहा, उदर भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, सिर्फ पेट भरना, बस पेट भरना जो है ये जीवन का लक्ष्य है ना, और कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, बस पेट भर लो। और पेट कभी भी भरा नहीं जा सकता, नहीं क्यों, क्या कारण है, है? क्योंकि छेद है ना, जैसे बाल्टी में छेद होगा कभी भर सकते हो, जिसके नीचे छेद लगा हो कभी भरा जा सकता है वो। लोगों को ये समझ नहीं आती कि कभी भी नहीं पेट भरा जा सकता, किसी का ना भरा है ना भरा जा सकता, क्योंकि भगवान ने नीचे छेद लगा दिया उसके। और लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है ये लिखा है उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, देख लो आज यही है बस। और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा, ढीठ समझते हो ना, ऑब्स्टिनेट, जो ढीठ होगा मैं ना मानू उसको उतना सत्यवादी माना जाएगा, तो बड़ा सत्यवादी है। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। दक्ष कौन है, एक्सपर्ट कौन है, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है बस। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा बस, धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा, मेरा यश हो जाए बस। तो इस तरह से आप पढ़ो, पहले सुखदेव गोस्वामी जो है इस कलयुग में क्या आने वाले हैं दोष पहले ही वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अब एक महान गुण के बारे में बता रहे हैं। क्या है, अस्ति एको महान गुणा, एक महान गुण है, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कि जो कृष्ण भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। परम गति, परम गति मतलब हा भगवान के धाम, भगवान की सेवा, भगवान को प्राप्त होता है वो परम गति। अध्यात्मिकता में भी अलग अलग लेवल है, तो आध्यात्मिकता में परम गति क्या है, भगवान की सेवा प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसको प्राप्त होता है, महान गुण है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतरार पिता नियमित स्मरणे ने काला एतादृशी तव कृपा भगवन मम। क्या है, दुर्देव नानुरागा, मेरा अनुराग नहीं हुआ, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि सारी शक्तियां आपने इसमें डाल दी हैं लेकिन मेरा अनुराग इसमें उत्पन्न ना हो पाया। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन वो एक हमारे जैसे भक्त की भूमिका निभाते हुए कह रहे हैं कि हमारा कोई अनुराग ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यही है कि भगवान के नामों में हमारा अनुराग नहीं है। हालांकि ये जो है सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए प्रभुपाद जी यहां क्या कह रहे हैं कि जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कलमश को नष्ट कर सकता है ना? जैसे कलई संतरण उपनिषद का भी श्लोक है ना, क्या है, तो नारदीय पुराण का है एक और श्लोक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम कलो कलमश नाशनम। कलयुग के जो कलमश हैं, ये सारी जो बुराइयां हैं उनको नाश करने के लिए ये 16 शब्दों के नाम है, इति षोडशकम् नाम नाम। ना परोतरो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते, सारे वेदों में हमने जांच कर ली है, सारे मंत्रों को हमने पढ़ लिया है, वेदों के जितने मंत्र हैं उनमें सब में हमने पढ़ लिया है, देख लिया है, और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में इस महामंत्र के अलावा। लेकिन क्या दुर्भाग्य की बात है कि फिर भी हम इस महामंत्र के लिए समय नहीं है हमारे पास। जैसे माता जी ने सोचा चलो अब बाकी सारा दिन तो समय मिलना नहीं है, चलो अब क्लास में बैठे हैं, चलो जप कर लो, है ना, समय निकालना है हमें अपने इसके लिए। यह सबकी, इनकी नहीं, ये सबकी ही बीमारी है, हम सबकी बीमारी है, हम सब जो है इसके लिए समय नहीं निकालते, अलग इसके लिए हमें अलग समय निकालना है। और बेस्ट है अगर हम इसका समय सुबह का रखें, सुबह का अगर हम समय रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा जप करना, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने भी कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज चैंटिंग यूर 16 राउंड्स एवरी डे अटेंटिवली। प्रभुपाद जी ने कहा जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी आप कर रहे हो, पुजारी हो, प्रचार कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ भी सर्विस कर रहे हो, या कोई व्यक्ति बाहर है, बाहर कोई नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, लेकिन जय श्री श्री राधिका रमन की, जय जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की जय हो, जय हो। तो जो भी कोई सेवा कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो 16 माला जप है वो अटेंटिवली करें। और अगर हम ये भगवान के नामों का जप करते हैं तो क्या हमें फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे हमें? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं, चितो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम है। इसमें अगर आप देखो तो चैतन्य महाप्रभु हमें 7 बेनिफिट बता रहे हैं, 7। हरे कृष्णा, आगे आगे बैठो, नींद आ रही है, इतना पास में आओ, इधर आओ, इधर आओ, पास में आ जाओ, या खड़े हो जाओ, जैसे आपकी नींद खुलती है, पास में आओगे तो अच्छा है, तेज आवाज आएगी तो नींद खुलती रहेगी आपकी। जो दूर बैठते हैं उनको नींद आने का ज्यादा समस्या होती है ना, कम आवाज आती है। क्या कह रहे थे हम, क्या चर्चा चल रही थी, क्या माता जी ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। जो पहला श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टक का, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम, इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमें 7 बेनिफिट्स बता रहे हैं। 7 बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो है ये मार्जन करता है। तो भगवान के नाम जो है हमारे चित्त में जो इतने जन्मों जन्मों की जो मैल जम गई है उसका मार्जन करता है। फिर हम अपने आप को देख सकते हैं। अभी जब हम दर्पण में देखते हैं, चित्त के दर्पण में, तो क्या नजर आता है हमें, है बाहर की, हाँ, हम जब अपने चित्त में देखते हैं तो मैल ही मैल नजर आती है। जैसे दर्पण है उसमें अगर धूल जमी हुई है, 1 किलोमीटर मोटी धूल जमी हुई है, तो क्या देखोगे आप, धूल के लाओगे समझ नजर आएगा, कुछ भी नहीं नजर आएगा। इस तरह से जब भी हमने चित्त में झांकते हैं तो मेटीरियल डिजायर्स के अलावा कुछ नहीं हमें नजर आता, कुछ भी पहुंच ही नहीं सकते, अपना हम कौन है वो देख ही नहीं सकते हम शीशे में। तो इसलिए बहुत जरूरी है चित्त और दर्पण मार्जना। ये होगा, ये किससे होगा, भगवान के नामों से। फिर भव महादावा अग्नि निर्वापनम, जो ये दावा अग्नि लग रही हुई है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में जो हम फंस गए हैं ये संसार के चक्कर में, ये दूर करता है। और फिर आनंद, और भी कहने के बाद जो एक सबसे बड़ा बताया है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, मतलब आनंद का जो सागर है उसकी वृद्धि करता है। आनंद 24 घंटे आनंद, तो कहां महसूस करते हैं 24 घंटे आनंद महसूस करते हैं, कहां महसूस करते हैं, नहीं कहां महसूस करते हैं, कई बार मन उदास होता है, कई बार दुखी होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि आनंद का जो अनुभव है क्यों नहीं हो रहा हमें? ये सारे जो भगवान जो हमें गारंटी दे रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे? तो उसका कारण है, उसके कई कारण है। एक तो आप जानती हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि भगवान का नाम जो है हमें पूरा बेनिफिट नहीं दे पा रहा? अपराध सब जानते हैं, 10 नाम अपराध जैसे हम बोलते भी हैं, अपराध है। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि जो हम अटेंटिवली चैंटिंग नहीं करते, हम लोग जो ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, ये सारी अपराधों की जड़ है। क्योंकि भगवान का नाम अगर हम जपें ध्यान से तो अपराधों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। सारे अपराध जो है इसलिए हैं, क्योंकि हम भगवान के नामों का जप ध्यान पूर्वक नहीं करते। जैसे अगर मान लो पहला अपराध है साधु निंदा करना, वैष्णव अपराध है दूसरे वैष्णवों की निंदा करना, तो वो किस लिए है? ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, है ना, अहंकार के कारण। तो जब हम भगवान के नामों का जप ध्यान पूर्वक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है वो इन दोषों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन मन को हम लगाते नहीं, मन को हम उसके साथ टच ही नहीं करते, भगवान के नामों के साथ मन को नहीं टच करते हम। तो भगवान के नाम जो ट्रांसेंडेंटल हैं, वो अगर मन उनसे टच होगा तो मन भी ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। तो मन ट्रांसेंडेंटल होता नहीं इतने सालों के जप के बाद भी, क्योंकि मन को लगाते नहीं है। मन जो है बहुत ही हठी है, जैसे बताया ना ढीठ, यहां प्रभुपाद जी वर्ड यूज कर रहे हैं ढीठ, तो मन भी हमारा बहुत ही ढीठ है, बहुत हठी है ना। अर्जुन कह रहा है ना, अर्जुन अपनी प्रॉब्लम बता रहा है ना, कौन सा श्लोक है? वेरी गुड, संचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवत दृढ़म। प्रमादी है, पागल है, बलवान है और दृढ़म है, हठी है। मैं ना मानू कुछ भी कर लो, मैं ना मानू। जैसे एक व्यक्ति था, उसका जो पड़ोसी था, कई लोगों ने सुना भी होगा, कई बार मैंने सुनाई है, कई लोग नए हैं उनको अच्छा लगे। वो ऐसा मन है हमारा जैसे हठी, कितना भी समझाओ फिर वहीं का वहीं। कैसे? वो उसका गंदा जो नाला था ना, गंदा पर नाला, उसके घर के आंगन में गिरता था। पड़ोसी के घर का गंदा पानी उसके जो दूसरा व्यक्ति है उसके घर के आंगन में गिरता था। बताओ कोई, अब आपके मान लो आंगन में गंदा पानी गिरे, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। तो पड़ोसी के पास गया, उसने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। वो था जरा दादा टाइप, दादा होते हैं ना जैसे, गुंडा टाइप था। कहता है तू जो करना है कर ले, पर नाला उठ ही बहेगा। अब बेचारा क्या करता, वो शरीफ आदमी था, साधु था, वो लड़ाई करने वाला नहीं, तो वो भी बोलता आगे से, वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा तो दादा टाइप है, इससे बच के रहना चाहिए। अब क्या करे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। तो फिर उसने क्या किया, पंचायत बुलाई, पंचायत के पास गया, पंच मतलब बैठे, तो उनके सामने समस्या रखी। पंचों ने कहा अच्छा ये बात है, बुलाया गया उसको, बुलाया गया, उसकी बात सुनी, फिर कहा देखो हमने दोनों का पक्ष सुन लिया है, अभी ये हमारा फैसला ये है कि या तो आप परनाले का जो मुंह है वो जो गिरता है उसको बंद कर दो, और या मुंह उसका कहीं और मोड़ दो, इनके आंगन में नहीं आना चाहिए पानी। उसने क्या जवाब दिया, कहता है पंचा दा फैसला सर मथे, पर नाला उत्थे ही बहेगा। ऐसा हमारा मन है, इसको कहते हैं हठी। कुछ भी करो, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं सुबह उठ के अपने मन को 100 जूते मारो, 100 जूते मारो अपने मन को, और रात को सोने से पहले 100 झाड़ू मारो इसको। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि इतना हठी है ये, इतना हठी है, तब जाके शायद काबू में आए, शायद तभी भी शायद है। और यही प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसीलिए हमें अलग समय निकालना है और ध्यान पूर्वक जप करना है, और हमें इस बात को समझना है कि भगवान के नामों में भगवान ने सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, सब कुछ अर्पित कर दिया है। और हम लोग जो हैं ये समझ नहीं पा रहे, हमारा हमारी आड़े पता क्या चीज आती है, हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो। हम हैं तो तुच्छ, हम तो इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारा कोई एक तरह समझ लो अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे समझ लो, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन हम समझते हैं हम तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। हम तुच्छ हैं, हमारा क्या माप क्या है बताओ, क्या माप है हमारा? वेरी गुड, बाल के जो अग्र भाग है उसका जो टिप है उसका 10,000वां आप देख भी नहीं पाओगे माइक्रोस्कोप में भी, इतना सूक्ष्म है हम हैं। और हम समझते क्या अपने आप को, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया है, उसकी ये मजाल, समझता क्या है अपने आप को, हम किसी से कम नहीं है, है कि नहीं आता ना, नहीं आता, इसलिए तो लड़ाइयां होती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, तरनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप चाह रहे हो कि भगवान के नामों का कीर्तन हम हमेशा करते रहें तो ये फॉर्मूला है, क्या तरनादपि सुनिचेन, अपने आप को तृण से भी नीचे नीच मानो, और तरोरपि सहिष्णुना पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु रहो, और अमानिना मान देने कीर्तनीय सदाहरि, अपने मान की कभी भी अपेक्षा नहीं करो और दूसरे को हमेशा मान दो। नम्रता, ह्यूमिलिटी क्या मतलब है, ह्यूमिलिटी क्या क्या मतलब, क्या डेफिनेशन है ह्यूमिलिटी की, कौन बताएगा नम्रता की डेफिनेशन, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े शार बच्चे हैं यहां तो, ये है ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन। ये नहीं हूं मैं, देखो मैं तो इतना हम्बल हूं, मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं, वो मेरे सिर पे ही चढ़ता जा रहा है, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, मैं तो इतना हम्बल हूं, इतना हम्बल हूं, देखो वो जो हम्बल होता है उसको पता ही नहीं होता मैं हम्बल हूं, जो नम्रता होती है ना जिसमें, उसको नहीं पता होता मेरे में नम्रता का गुण है। जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आप अगर किसी को देख सकते हो कि ये इसमें नम्रता है, वो कभी भी मान की इच्छा नहीं करेगा, जो मान की इच्छा कर रहा है वो उसमें नम्रता नहीं है। तो यही चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं, अमानिना मान, दूसरों को मान देना है और अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं करना हमें। और ये तभी आएगा जब हम, फिर वही बात है, जब हम भगवान के नामों का जब ध्यान पूर्वक करेंगे, अलग से समय निकालेंगे, अपने आप ही होगा ये, अपने आप स्वतः ही ह्यूमिलिटी आएगी। आप देखिए जो भी, आप देखो जो भी डिवोटीज एडवांस हैं वो हम्बल होते हैं कि नहीं, है कि नहीं। प्रभुपाद जी को देखो और हमारे आचार्यों को देखो, उनमें हम्बल ह्यूमिलिटी है कि नहीं, नेचुरली ह्यूमिलिटी है, वो एक्टिंग नहीं करते, ह्यूमिलिटी का एक्टिंग नहीं है, जैसे एक्टिंग करते हैं पांव को छूना, जो व्यक्ति मिला वहां छा सबको ऐसे प्रणाम करते रहे, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। हमारे जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वो आते ही सबको प्रणाम थोड़ा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ह्यूमिलिटी जो है ये अंदर की वस्तु है, मतलब वो मान नहीं चाहते वो, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि मान के अधिकारी भगवान है, हम मान के अधिकारी नहीं है, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य, अब सूर्य के आगे कितना बड़ा आप लैंप जला दो, कितना भी बड़ा, उसकी कोई रोशनी आएगी। जैसे अभी आपने तो ये बंद किए हुए हैं, है ना, ये शैंडलियर, कितने बड़े बड़े शैंडलियर लगे, रात को कितनी रोशनी देते हैं, जगमग कर रहा होता आपका टेम्पल, नहीं दूर से आओ जगमग जगमग कर रहा होता है, तो अभी तो बुझी गए हैं, अभी जला के देखो कितनी रोशनी देते हैं, जरा करो, अभी तो सूर्य पूरा आया भी नहीं है, अभी सूर्य और ऊपर आने दो, नजर भी नहीं आएंगे ये इतने बड़े बड़े, ये वाली नजर भी नहीं आएगी, ये लाइट इतनी तेज है फ्लैश, ये भी नजर नहीं आएगी, और सूर्य ऊपर आ गया तो, है ना। इसी तरह से आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, जैसे जैसे आप भगवान के नजदीक पहुंचोगे, आपका कोई तेज है ही नहीं, जैसे सूर्य के सामने हर एक चीज निस्तेज है, इसी तरह से भगवान के सामने ब्रह्मा जी भी निस्तेज है, है ना। जैसे एक बार ध्यान है ना आपको, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था, याद है, पता है ना कथा, आप सब होशियार बच्चे हो, जिसमें आए ब्रह्मा जी भगवान को मिलने, तो कहते हैं द्वारपाल को, द्वारपाल ने रोक दिया, कहते हैं मुझे क्यों रोक रहे हो, जाओ भगवान को बोलो ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने बोला जाके, भगवान ने कहा उनसे पूछूं कौन से ब्रह्मा जी। द्वारपाल बाहर आया, भगवान जी पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। वो परेशान हो, वो ब्रह्मा जी कौन से, कोई और ब्रह्मा भी है क्या? बड़ा हैरान हुआ, तो ब्रह्मा और भी। अब उसने कहा ना क्या, उसने कहा अच्छा बोल दो चतुर्मुखी, चार मुखों वाले ब्रह्मा जी आए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब इसको जरा समझ नहीं है, इसको समझाते हैं। जब तक वो अंदर आते, भगवान ने सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को बुला लिया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी वो वाले आए अंदर, तो उसने देखा कईयों के आठ मुख हैं, कईयों के 64 मुख हैं, कईयों के हजारों मुख हैं, और वो अपने आप को देख रहे थे चूहे की तरह, जैसे छोटा सा चूहा होता है ना बड़े बड़े हाथियों में, वैसे नजर आ रहा था उनको। उनको समझ आ गई अब थी औकात, ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड के जो मालिक हैं उनकी भगवान के आगे ये स्थिति है ना। और हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमारे तो कोई है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है हम। वो कितने नाचते रहते हैं हम लोग भगवान के सामने, नाचना अच्छा है, नाचो, नाचने का मतलब कितने अहंकार में हम नाचते हैं, वो गलत है। भगवान के सामने नाचने से तो अहंकार दूर होता है, नाचना चाहिए। तो ये है अहंकार जो है हमारा, ये हमें जपने नहीं देता। नहीं तो जैसे ये बताया है, ये तो एक महान गुण है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरे कीर्तन करने के महत्व का अनुमान लगा पाना असंभव है, असंभव है। यही रूप गोस्वामी भी यही कह रहे हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण का मैं नाम लेता हूं तो भगवान कृष्ण मेरे जिह्वा पे आके नृत्य करते हैं, उनके चरणों से ऐसा अमृत निकलता है, ऐसा अमृत निकलता है कि एक जिह्वा तो उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रही। मेरी अगर हजारों हजारों जिह्वा हो तब कुछ उसका मैं टेस्ट कर पाऊंगा। और ऐसे कह रहे हैं कि जो कानों में जाता है ये अमृत, तो दो कानों से मैं उसको प्रसीव नहीं कर पा रहा, हजारों हजारों कान हो तब मैं इसको प्रसीव कर पाऊंगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं कि हरे कृष्ण के कीर्तन करने के महत्व का अनुमान लगा पाना असंभव है। अनुमान ही नहीं लगा सकते आप। और आप इतिहास में देख सकते हैं कैसे श्री प्रभुपाद जी अकेले अकेले गए अमेरिका, और 70 साल की उम्र में। यहां पे तो कोई 70 साल का व्यक्ति बैठा भी नहीं होगा, कोई बैठा हुआ है? किसी की उम्र है 70 साल? प्रभु जी भी अभी 70 साल के नहीं हुए, क्योंकि 70 साल के बाद आदमी बाहर निकलना छोड़ देता है। एक ही व्यक्ति है, चलो चलो मान लिया 70 या 69, एक ही व्यक्ति है। ये तो डिवोटी है इसलिए इनमें उत्साह है, आ गया मंदिर। ज्यादातर जब 70 साल की उम्र में लोग पहुंचते हैं तो उनको घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, आलस आ जाता है उनको। और श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में देश छोड़ के गए, घर नहीं देश ही छोड़ के गए विदेश में, और वो भी 7 समुद्र पार। कोई यहां नहीं, कहीं कहीं चले गए अमेरिका, 7 समुद्र पार करके अमेरिका गए, और वहां जाके उन्होंने भक्ति का बीज रोपा ऐसी भूमि पे। क्या आधार था? यही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। टॉम्पकिंस स्क्वेयर पार्क है वहां पे, अगर अभी भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था, और सारे जो हिप्पीज थे वहां इकट्ठे हो गए थे। प्रभुपाद जी की जो पुरानी वीडियो है उसमें आप देख भी सकते हैं कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं कोई मृदंग भी नहीं लेके गया था, करताल भी नहीं लेके गया था यहां से, बस ऐसे ही किसी ऐसे जैसे करताल भी नहीं थी उनके पास, मृदंग भी नहीं था, ऐसे जैसे डुगडुगी होती है किसी वो बर्तन को लेके बजा रहे हैं वहां से, कुछ भी नहीं था प्रभुपाद जी के पास, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसी के उन्होंने शुद्ध रूप से उनको कीर्तन किया, और आज देखो सारी दुनिया में इस्कॉन फैला हुआ है एक व्यक्ति के प्रयास से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। तो इसीलिए ये जो हम हर साल ये होली नेम वीक मनाते हैं, है ना, तो सारी दुनिया में एक हफ्ता जो है भगवान के नामों की कीर्तन की जो महिमा है इसके ऊपर चर्चा हो रही है, और इन्हीं दिनों आपके 17 सितंबर को हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं उनका भी तिरोभाव था, है ना, आप सब लोगों ने मनाया होगा। तो नामाचार्य 3 लाख जप किया करते थे वो, है? आपको पता है उनके पास एक बार एक वैश्य आई, अब सब जानते हैं कथा। तो उन्होंने, वो जवान थे, खूबसूरत थे, अकेले रहते थे गुफा में, और वहां पे एक मुसलमान शासक था जो ईर्ष्या करता था, उसने एक वैश्य को भेजा, ये नाटक करता है बहुत ज्यादा, सबको पर्दाफाश हो जाएगा। तो हरदास ठाकुर को पता लग गया, पहले ही पता लग गया उनको कि कोई वैश्य आने वाली है, लेकिन वैष्णव है ना, वैष्णव लोग बड़ा दुखी दुखी, उनका था कि ठीक है किसी बहाने भी आ रही है तो इसको हरि नाम देना है। तो जैसे ही वो आई तो वो बैठ गई और तरह तरह की बातें करने लग गई, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये है वो है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है आप आए हो हमारी कुटिया में, आप हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन दिक्कत है मैंने संकल्प लिया हुआ है कि 3 लाख जप करने हैं मैंने, मेरा अभी वो संकल्प पूरा नहीं हुआ, मैं अभी संकल्प पूरा कर लेता हूं उसके बाद आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वो बैठ गई और वो जप करते रहे करते रहे करते रहे। अब उसके बाद इतनी शक्ति थोड़ा है उसको, तो थोड़े दिनों में नींद आ गई, वो बूढ़ा केज थोड़ा थी वो, है कि नहीं, उसको तो कंट्रोल नहीं था आपकी नींद पे, जब टाइम हुआ तो नींद आ गई, सो गई बेचारी। अब सो गई तो सुबह उसकी नींद खुली तो सारे गडरिए सब वहां पे आ गए सब लोग, तो भागना पड़ा उसको, चली गई वो। लेकिन वो जाके कहती है तुम घबराओ नहीं रामचंद्र खान को, आज जरूर उसको मैं पस्त करूंगी, आज जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। वो जब दोबारा वैश्या जाती है तो वही सीन, दोबारा वही सीन, हरिदास ठाकुर जी का भी जप ही नहीं पूरा हुआ था। फिर वो बैठ जाती है, बैठ जाती है सो, तो फिर उसको नींद आ जाती है। तीसरे दिन जब आती है वो तो उसका हृदय ही चेंज हो गया होता है, क्योंकि हरिदास ठाकुर का जो मुख से शुद्ध नाम जिसने सुना है वो कोई अप्रभावित थोड़ा हुआ, कानों के जरिए उसके हृदय में गया है तो उसकी सफाई हो गई सारी, और उनके चरणों में गिर जाती है और हरिदास ठाकुर को कहती है सारा समझा बता देती है। वो कहती है मैं तो आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, सारा जो अपना पैसा है, सारा मकान है, सब बेच के आओ, सब बेच के आ जाती है और इतनी अच्छी शिष्या बनती है। और फिर हरिदास ठाकुर उसको वही अपनी कुटिया, वही तुलसी का जो वहाँ वृक्ष था वो सब उनको दे के हरिदास ठाकुर चले जाते हैं वहाँ से। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे आने से पहले मैं ये कुटिया छोड़ के जा सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ रुका था। तो ये है जब हम नाम का शरण लेते हैं तो फिर जो है ये चीज़ें हमें सताती नहीं है। अभी योगी कितना प्रयास करते हैं, हैं, मन को अपने वश में लाने का कितना प्रयास करते हैं, हैं? और उसके साथ ही हम पढ़ते हैं उनकी कथा विश्वामित्र की, कितने हजारों हजारों साल तक तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को वश में कर रहे हैं। और मैंने कहा आई टू टू ऐसे ऐसे किया, पायल खड़काई, ध्यान टूट गया। वो ध्यान क्या टूटा, सब कुछ ही टूट गया उनका, है पता है ना आपको सारी कथा। और इधर देखो हरिदास ठाकुर क्या है, ये भगवान के नाम जब हृदय में जाते हैं तो चीजें तुच्छ हो जाती हैं, फिर और कोई चीज वहां आ ही नहीं सकती। भगवान क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, हजारों हजारों कामदेवों को आकर्षित करने वाले हैं वो नाम। और भगवान में अंतर थोड़ा है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान का नाम हृदय में आ गया तो फिर जो है मन कहीं जाता ही नहीं है, फिर मन के आपको कोई फिर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मन कहीं नहीं जाता फिर। नहीं समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ये है नाम की महिमा। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं और कानों के जरिए ये हमारे हृदय में घुस जाता है, और जब हृदय में घुस जाता है, हृदय में बैठ जाता है ये, तो फिर ये मन जो है कहीं जाता ही नहीं है, ये आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, खींच के लाओ वहां से, खींच के लाओ वहां से, खींच के लाओ, लाओ लाओ लाओ, वो जाता ही नहीं है कहीं पे, स्थिर हो जाता है स्थिर। ये है नाम की महिमा। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तन करने के महत्व का अनुमान लगा पाना असंभव है, असंभव है। कुछ भी कर सकते, भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है, दो वस्तु नहीं है ये। तो इसीलिए हमें, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें नाम मिल गया है, लेकिन अगर हम इसके लिए समय नहीं निकालेंगे और टेम्पोरेरी चीजों के पीछे भागेंगे हम, जो हमारे साथ रहने वाली नहीं है, आसक्ति इधर नाम में आसक्ति नहीं है, टेम्पोरेरी चीजों में आसक्ति है, घर में, रिश्तेदारों में है। वो भजन सुना आपने, मन पापी अड़ियां करदा, सुना है? किसको आता है तुम्हें, किसको आता है, है? सुनो, मेरी तो इतनी आवाज आते हैं। ओ मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू, ओ जिथे होवे निंदा चुगली, दौड़ दौड़ ऐ जांदा, ओ जिथे होवे कथा वारता, ओथे पैर न पांदा, ओ मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू, ओ जिथे होवे कथा वारता, ओ जिथे होवे कथा वारता, ओथे पैर न पांदा, मैं कई बार समझाया, तू छड़ दे लंबड़दारी नू। लंबड़दारी समझते हो, चौधरी होते हैं ना, गांव के चौधरी होते हैं, ओ मैं कई बार समझाया, तू छड़ दे लंबड़दारी नू, ओ मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू, ओ तियां पुत्र बड़े लाडले, ओ कोट कोट गले लांदा, मन यहां गुस्सा हुआ है, ओ तियां पुत्र बड़े लाडले, कोट कोट गले लांदा, ओ जे मैं जानदा कोई ना मेरा, प्रभु संग प्रीत लगांदा, ओ जे मैं जानदा कोई ना मेरा, प्रभु संग प्रीत लगांदा, कथा वारता नित मैं जांदा, प्रभु चरना जिंद लांदा, ओ नहीं चुकदा गठरी पारी नू, ओ मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। समझ आई बात? असली जो हमने, असली चीज जो है ये भगवान के चरण है। हम रिश्तेदारी, बच्चे, प्रॉपर्टी, पैसा, समाज, यश, इसमें चक्रों में पड़े हुए हैं, ये है ही नहीं हमारा, ये छूटना है, ये जान लो। जो ये जान गया कि ये मेरा नहीं है, वो बहुत कुछ जान गया, बेकार की हमने गठरी अपने सिर पे उठाई हुई है। जैसे एक व्यक्ति था, घोड़े पे जा रहा था, घोड़े पे, और गठरी रखी हुई थी सामने, घोड़े पे बैठा था, गठरी सामने रखी हुई थी, भारी गठरी, तो एक व्यक्ति जा रहा था। ऐसी व्यक्ति होते हैं ना, खाम खा, तू कौन, मैं खाम खा, बात है ऐसी बोल रहे, कहते हैं कोई कैसा आदमी है, कितना निर्दयी है, खुद तो बैठा हुआ है और गठरी भी रखी हुई है घोड़े के ऊपर। अब वो, उसने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। उसने क्या किया, गठरी उठा के सिर पे रख ली, है ना मूर्ख, यहां भी तो घोड़े के ऊपर ही है वो गठरी। ऐसी हम करते हैं, वो करने वाले सारे भगवान है, और खाम खा की गठरी सिर पे लेके चल रहे हैं। ओ जी बड़ी बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम्स नहीं जी, ग्रस्त जीवन, ग्रस्त जीवन में भक्ति कैसे कर सकते हैं हम, ग्रस्त जीवन, वो ग्रस्त जीवन का भी भगवान ही पालन कर रहे हैं। आपने खाम खा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे रखी हुई है, समझ आई ना, वो घोड़े वाली बात याद रखनी थी हमें। भगवान एको बहुनाम है ना, कठोपनिषद का श्लोक है ना, एको बहुनाम, चेतनो चेतनाम एको बहुनाम, जो विद्याधि काम है, मतलब उसका यह है कि एक भगवान है जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं, भगवान एक है लेकिन सबका भरण पोषण वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं ना, वो श्लोक में बताया था ना कि भरण बस पेट भरना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, पेट भर जाए जी, वो पेट भगवान भरने वाले हैं, सबका भरने वाले हैं, चींटी का भी भरेंगे, हाथी का भी भरेंगे, गेंडे का भी भरेंगे, वहेल का भी भरेंगे, आपका क्यों नहीं भरेंगे, आपका क्यों नहीं भरेंगे, आप तो वहेल जितना नहीं खाते, हाथी जितना भी नहीं खाते आप, तो क्यों नहीं भरेंगे पेट। लेकिन हम इसके चक्कर में पड़े हैं और ये जो भगवान का नाम असली चीज है इसको लिए टाइम नहीं है हमारे पास, ये है दुर्भाग्य। तो आप प्लीज जो लोग माला कर रहे हैं वो ध्यान से करें, समय निकालें और ये समझिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है ना। जैसे जैसे मान लो एक बॉक्स है, अच्छा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है 9 बजे क्लास खत्म हो जानी चाहिए ना, तो 9 तो बजे क्या आ गया आप लोग, क्या आ गया, 1-2 मिनट आगे चले या छोड़ दें यहीं पे। मैंने सोचा था बड़ी जल्दी जल्दी घड़ी आगे चलती चली गई, 9:45 से मैंने सोचा था क्लास खत्म करूंगा लेकिन 9 तो पता ही नहीं लगा कैसे बज गए। मैंने सोचा था प्रश्न उत्तर के लिए भी आपको समय देंगे, तो क्या मैं कह रहा था मेरी बात भी हो। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखो एक बॉक्स है, बॉक्स कई लोगों ने सुनी भी होगी शायद, कई लोगों ने नहीं सुनी हो। अगर आप उसको भरना चाहते हो पत्थर से, रेत से, छोटे कंकरों से, पूरी तरह से, मतलब पूरा स्पेस यूज करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले मोटे मोटे पत्थर डालो उसमें, मोटे मोटे, फिर क्या करो छोटे छोटे कंकर डाल दो, फिर रेत डाल दो और फिर आखिर में पानी डाल दो, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर आपने बेवकूफी कर दी, वो बेवकूफी करके क्या किया, उस ट्रंक में पहले रेत डाल दिया आपने, तो कुछ नहीं आ पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी डाल सकते हो बस, छोटे कंकर भी नहीं आएंगे उसमें, बड़े पत्थर तो आएंगे नहीं बिल्कुल, सच बात है। इसी तरह से अपना डे आपने स्टार्ट नहीं किया भगवान के नामों के जब से, जो सबसे बड़ा पत्थर है, सबसे बड़ा पत्थर है ये। इसीलिए मैंने देखा है बड़े बड़े जिमनास्ट को, बड़े बड़े वेट लिफ्टर को जो 500 किलो भार उठा लेते हैं, ऐसे 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 उठा लेते हैं, माला नहीं उठा पाते, उनको बोल माला उठाना नहीं, सच्ची इसलिए मैं कह रहा हूं भारी है, प्रूफ है, हमने करके देखा है, जिम में जाकर हमने कहा माला उठा, मुझे ये नहीं उठाई जाती। इसीलिए इस ट्रंक में सबसे मोटा पत्थर ये डाल लो पहले, मतलब अपने टाइम को 24 घंटे में शुरुआत करो भगवान के नामों के जप से ज्यादा 16 माला कर लो तो बेस्ट है, तो काम ही खत्म, सारे दिन की छुट्टी, नहीं तो जितना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा सुबह माला करो आप, फिर दूसरे काम अपने आप फिट हो जाएंगे, वो तो छोटे छोटे पत्थर है, रेत है, अपने आप चले जाएंगे, देख करके देख लो आप, जीवन बहुत सुंदर और सुखी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम जो गाड़ी है ना, गाड़ी घोड़ा गाड़ी होती है ना, गाड़ी के आगे घोड़ा लगाना है, हम पीछे लगा लेते हैं, कैसे चलेगी गाड़ी, गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, गाड़ी के पीछे जो है, कार्ट के पीछे को घोड़ा लगा दो तो चलेगी गाड़ी, घोड़ा आगे होना चाहिए ना। तो ये भगवान के नामों का जप जो है ये इंजन है हमारे सारे दिन का, इसको अगर हम आगे नहीं लगाएंगे, सबसे पहले नहीं शुरू करेंगे, तो सारा दिन फिर ऐसे ही तमोगुण रजोगुण में गुजरेगा और बेकार। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से और बहुत ही इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं। मैंने तो क्लास बहुत सिंपल दिया है, मैं इतना ज़्यादा गहराई में मैं जा नहीं पाता, आप तो बहुत इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।